الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ते हैं मारफुल कुरान की जिल्द नंबर 5 से, और जो आयत अभी तिलावत की गई ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 21 से 23 है, 21 से 23। इनका हम पहले तर्जुमा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर खुलासे तफसीर और फिर मारुफ मसाइल। तो सूरह यूसुफ के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है और वही चल रहा है अभी। तो उसमें अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, वकाल लज़िश्तराहु मिन मिस्र, ठीक है, कि उसने कहा, जिसने काला, उसने कहा, अल्लज़ी, जिसने, इश्तराहु, खरीदा उसको, ठीक है। इश्तरा, यश्तरी का मतलब होता है खरीदना, और बैअ का मतलब होता है बेचना, बाअ यबीउ का मतलब बेचना। किसी को अगर याद रखने में मुश्किल हो कि बा का मतलब बेचना होता है कि इश्तरा का मतलब बेचना होता है, तो वो उर्दू के अंदर बा का लफ्ज याद रखे कि बा से बेचना होता है और बा से बा होता है, ठीक है। तो बाकी दूसरा जो है क्या, वो इश्तरा होता है, तो वो खरीदना होता है। तो कहा उसने, जिसने खरीदा उसको, किसको, यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो हु की जो जमीर है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ पॉइंट कर रही है, अगरचे यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है उनका नाम, ठीक है। तो जमीर का जो मर्जा होता है यानी जिस तरफ वो प्रोनाउन पॉइंट कर रहा है, वो नाउन कभी कभी हिडन भी होता है, कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से, कि किस नाउन की बात हो रही है यहाँ पे, किस इसम की बात हो रही है। तो इश्तराहु मिम मिस्रा, मिस्र जो है वो शहर को भी कहते हैं, और ये एक खास शहर का नाम भी है जो कि अफ्रीका के बिल्कुल शुमाल मशरकी एंड के ऊपर जो जगह है उसको मिस्र कहते हैं। अब तो इतना बड़ा वो मुल्क है ना, मुल्क के मिस्र, इजिप्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन पहले जो है वो पूरा का पूरा जो है मिस्र नहीं कहलाता था, बल्कि उसका एक छोटा सा पार्ट जो था ना वो मिस्र कहलाता था, ठीक है, शहर मिस्र कहलाता था। और काहिरा जो है वो बाद में बना, और इस्कंदरिया वहाँ का एक शहर है, और उस तरह के और बहुत सारे शहर हैं। तो बहरहाल, तो ये जो मिस्र का शहर था, तो इसमें उसने खरीदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो उस खरीदने वाले ने कहा, किसको कहा, ली इमराती ही, अपनी औरत को कहा, यानी अपनी बीवी को। इमरा जो है वो औरत के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन जब किसी की औरत, अल्लाह ताला कुरान मजीद में किसी की निस्बत के साथ, पोजेसिव निस्बत के साथ औरत का जिक्र करते हैं, जिसका मतलब बीवी होता है, ठीक है। तो उसने अपनी बीवी से कहा, लिमराती ही, अपनी बीवी से कहा, अक्रिमी, इकराम करो, मसवाहू, इसके ठिकाने का। मसवा कहते हैं ठिकाना, यानी तुम जहां पे इसको रखोगी ना घर के अंदर, जो जगह दोगी इसके रहाइश के लिए, तो वो बड़े यानी इकराम वाली जगह होनी चाहिए, आराम और यानी अच्छी जगह होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम इकराम करो मसवाहू, उसके ठिकाने का, उसके रहने सहने का, ठीक है, जिसको हम उर्दू में रहना सहना कहेंगे, अच्छा इंतजाम करो। आसा, शायद के, यानी उम्मीद है कि शायद के, अन यनफाना, के यनफाना, वो हमें नफा देगा, वो नफा देगा हमें, यनफा ना, यानी मुझे और तुम्हें नफा देगा। औ नत्तखिज़हु वलदा, या हम उसको बना लेंगे अपना बेटा। ठीक है, उसको अखज कर लेंगे यानी उसको ले लेंगे अपने बेटे के तौर पर, अपना बेटा बना लेंगे। उर्दू मुहावरे में बेटा बना लेना कहेंगे उसको। ठीक है, वह कजालिका, और इस तरह, ऐसे ही। कजालिक का मतलब क्या होता है उर्दू में तर्जुमा करते हैं, इसी तरह। दैट्स हाउ, अंग्रेजी में कहें दैट्स हाउ। मक्कन्ना, हमने ठिकाना दिया। ठीक है, मकान दिया, मकान। ठीक है, मकान जो है वो जहां पे कोई होता है ना, काना या कूनू, कौनन होना। ठीक है, काना होने के लफ्ज में इस्तेमाल होता है। तो मकान जो है ना, वो उस जगह को कहते हैं जहां पर कोई रिजाइड करता है, जहां पर कोई होता है, मौजूद होता है, ये उसका मकान होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कुरान मजीद में मक्कन्ना का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हमने उसको मकान दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? या तो हमने उसको नेमतें दी, घर की नेमत दी, ठिकाना दिया। ठीक है, या इसका मतलब ये भी होता है कि हमने उसको जमीन में यानी गाड़ दिया, या यानी जमीन में उसको कुव्वत दे दी, हुकूमत दे दी। ठीक है, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जगह फरमाते हैं ना उन लोगों के बारे में कि अल्लज़ीना इमक्कन्नाहुम फिल अर्ज, कि जब हम उनको जमीन के अंदर हुकूमत देते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अल्लज़ीना, वो लोग क्या करते हैं, अकामुस्सलाता व आता वो ज़कात, वो नमाज कायम करते हैं और वो ज़कात का एहतमाम करते हैं, ज़कात की अदायगी का। व अमरु बिल मारूफी व नहु अनिल मुनकर, है ना, और नेकी का हुक्म करते हैं और वो गुनाहों से यानी बुराइयों से रोकते हैं। यानी ईमान वालों का अल्लाह ताला को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब हम उनको जमीन में हुकूमत देते हैं ना, तो वो उसके बाद यौमे आज़ादियाँ नहीं मनाते, 14 अगस्त या 15 अगस्त नहीं मनाते, और नाच गाना और शोर शराबा और जो है वो झंडियाँ लगाना ये नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, अकामुस्सलाता व आतवुज़्ज़कात व अमरु बिल मारूफी व नहु अनिल मुनकर। ठीक है, तो जब वो ये काम करते हैं तो हम उनकी इस आज़ादी को बढ़ा देते हैं, हम उनकी इज्जत जो है ना वो बढ़ा देते हैं, उनको फैला देते हैं जमीन के अंदर, उनका फैलावा बढ़ा देते हैं। पहले तो छोटा मुल्क दिया था, उनका मुल्क वसी कर देते हैं, जैसे मुसलमानों का, सहाबा कराम का, अल्लाह ताला ने मुल्क वसी कर दिया। ठीक है ना, और जिनका जो ये काम नहीं करते, उनका मुल्क जो है ना वो दो टुकड़े कर देते हैं, ईस्ट उधर वेस्ट इधर, और उसके बाद फिर जो बाकी बच जाते हैं उनके भी लाले पड़े हुए रहते हैं हर वक्त, है कब टूटा, अब टूटा, कल टूटा, अब है टूटने 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 के लाले पड़े रहते हैं। क्यों लाले पड़े रहते हैं? क्योंकि उन्होंने नमाज कायम नहीं करी थी, जकात अदा नहीं करी थी, और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं किया था। ठीक है, तो फिर जो है ना वो हथियारों से लैस भी होते हैं, लेकिन अपनी हिफाजत खुद ही नहीं कर पाते, दूसरों की क्या हिफाजत करेंगे। ठीक है ना, ट्रेनिंग भी है, हथियार भी हैं, सारी की सारी टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन आके मार के चले जाते हैं। ठीक है भाई, क्यों मार के चले जाते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने आप ना आपने अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत करी, तो अल्लाह आपकी क्यों हिफाजत करे? अल्लाह की हिफाजत तो अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत के साथ मशरूत है, मशरूत है ये। अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। हमने तो नहीं करी ना अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत, तो अल्लाह ताला ने भी हमारी हिफाजत के ऊपर से हाथ उठा लिए। ठीक है, तो बहरहाल मक्कन्ना की बात हो रही थी, तो यहाँ पर जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने ठिकाना दिया। ठीक है ना, इसी तरह से हमने यूसुफ को ठिकाना दिया, फिल अर्थ, जमीन के अंदर इस्टैब्लिश किया उनको। वली नुअल्लिमहु मिन तअवील अहादीस। ठीक है, ली का तर्जुमा पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ली लामे कई है ये, यानी ताके, इसका तर्जुमा होता है ताके। नुअल्लिमहु, हम इल्म दें उसको, मिन तअवील अहादीस, हदीस की तावील का इल्म दें। ठीक है, हदीस बातों का, बातों की समझ, हदीस का जो लफ्ज है वो बातों के लिए, बल्कि नई बातों के लिए इस्तेमाल होता है। और यहां पर जो इसका मफहूम है, तफसीर जो है वो है ख्वाब, ख्वाबों के अंदर जो नई बातें दिखाई जा रही होती हैं, सुनाई जा रही होती हैं, दिखाई जा रही होती हैं और यानी सुनाई जा रही होती हैं वगैरह, तो उनकी जो है ना यानी उनकी समझ अता फरमाते हैं। ठीक है, यानी जिसको कहते हैं एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, यानी बातों बात की गहराई तक पहुंच जाना। तावील का मतलब क्या होता है? बात की गहराई तक पहुंच जाना, सिर्फ जाहिर के ऊपर कयास ना कर लेना, जैसे नजर आ रहा है अच्छा ऐसे ही होगा, है ना, ये नहीं, बल्कि असल वजह क्या है, असल हकीकत क्या है किसी बात की, उस तक पहुंच जाना, इसको कहते हैं तावील करना। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने यूसुफ को ठिकाना दिया, क्यों ठिकाना दिया, ताकि हम उसको बातों की तावील का इल्म अता फरमाए। ठीक है, अब इसकी तफसीर आगे पढ़नी है इंशाल्लाह, तो वहीं पे वल्लाहु ग़ालिबुन अला अम्री, और बीच में अल्लाह ताला अपनी शान बयान फरमा रहे हैं किस्से के, एकदम से किस्से को जो है ना मौकूफ किया और अपनी शान बयान करनी शुरू करी, और अल्लाह ग़ालिब है अला अम्री ही, अपने कामों के ऊपर। ठीक है ना, अल्लाह ताला के काम ऐसा नहीं होता जैसे हमारे काम होते हैं ना, संभाले नहीं जा रहे होते, हमसे निकल रहे होते हैं, इधर को पकड़ते हैं तो दूसरा सिरा हाथ से निकल जाता है, उस सिरे को पकड़ते हैं तो ये वाला सिरा हाथ से निकल जाता है, फिसलते रहते हैं मामलात। ठीक है ना, कुछ जो है वो समझ में नहीं आ रहा होता, हम अपने कामों को हैंडल नहीं कर पाते। अल्लाह के साथ ऐसा मामला नहीं है, अल्लाह ताला जो है ना, एक तो सारे उमूर का मालिक अल्लाह ही है, हम तो थोड़े से उमूर के मालिक होते हैं ना, हमसे हमने तो एक छोटा सा घर चलाना होता है, या जो है वो और बढ़ जाएगा तो हम कोई डिपार्टमेंट चला लेंगे, मैनेजर बन जाएंगे, है ना, तो वो उसके अंदर चंद एम्प्लॉयज होंगे, रिपोर्टीज होंगे, या कोई कंपनी कॉरपोरेशन चला लेंगे, या जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर आ जाएंगे तो जो है वो कोई शहर के मेयर बन जाएंगे, या किसी सूबे के गवर्नर बन जाएंगे, या किसी मुल्क के सदर बन जाएंगे, लेकिन ये सारा का सारा जो है बहुत ही महदूद। और ये भी नहीं कि अगर मुल्क के गवर्नर, मुल्क के जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो अब इसका मतलब ये है कि मुल्क की चूटियों को भी हमने खिलाना है, क्या ख्याल है? मुल्क की चूटियों को तो छोड़ें, एक घर के हम अमीर बनते हैं ना, घर का जो बड़ा होता है, बाप होता है, दादा होता है, तो वो घर के अंदर किन चीजों को संभाल रहा होता है, वो घर के अंदर जो कॉकरोच रहते हैं आप उन कॉकरोचों को खिला रहा होता है, उनके जो है वो मसलों को हल कर रहा होता है, चूटियों के मसलों को हल कर रहा होता है ना, कुछ भी नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा बेगम साहिबा को सेट करके रखना, बच्चों को जो है वो ठीक करके रखना, आपस में लड़े नहीं, और जो है वो उनकी तालीम का इंतजाम होता रहे, और तरबियत का इंतजाम होता रहे, दैट्स ऑल, हम इससे ज्यादा हमारे उमूर नहीं होते। ठीक है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, जब जिन कामों को संभालते हैं, वो सारे कामों को संभालते हैं, उसके अंदर जो है वो वायरस से लेकर के जो प्लैनेट्स और स्टार्स हैं, है ना, सब का सब अल्लाह ताला जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं, और ऐसा मैनेज कर रहे होते हैं कि बिल्कुल स्लिप करने का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है अल्लाह ताला की तखलीक के अंदर, है ना, कि कोई चीज अल्लाह के कुदरत से बाहर निकल जाए, अल्लाह ताला के, है ना, वो छुप करके कोई जो है वो कहीं कहीं इधर उधर हो जाए, राइट, ये है हमारा अल्लाह, और ये है हम, हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है, हमारा किस चीज के ऊपर मिल्कियत है, जो अल्लाह ताला ने छोटी छोटी मोटी मिल्कियत हमें इस दुनिया में दे के भेजा है ना, जिसका हमें हिसाब देना है ऊपर, वो मिल्कियत कितनी मुख्तसर है, कितनी महदूद है हमारी मिल्कियत, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मिल्कियत, ये है हमारा अल्लाह, और हम जो है ना वो अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू हो जाते हैं कि हम मैनेज करेंगे, हम सेट करेंगे चीजों को, हम चलाएंगे चीजों को, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग गोज वेल, राइट, और ऐसा हम गुम होते हैं अपने आप में और अपनी मैनेजमेंट में, और हमारे जो रिपोर्ट, जो हमारे तहत जो जो मामलात होते हैं छोटे मोटे, है ना, खिलौनों वाले मामलात, हम ऐसा उसके अंदर महव होते हैं कि हम अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह ताला हमारी निगाहों से ओझल, हमारी सोच से ओझल, हमारी जुबान के जो अल्फाज होते हैं उनमें अल्लाह ताला का तस्करा नहीं होता, अल्लाह ताला का जिक्र नहीं होता, है ना, हम ऐसा मखलूक में फंसते हैं कि हम खालिक को बिल्कुल फरामोश कर देते हैं, है ना, लेकिन खालिक जो है ना वो भी इतना करीम है कि उसने हमें अपना कलाम अता फरमाया, और उस कलाम के अंदर वो हमें बार बार याद दिलाते रहता है ना, बार बार याद दिलाते रहे, ये क्या कर रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ पे अपनी आयात के अंदर, याद दिला रहे हैं ना, किस्से को छोड़ करके बीच में याद दिला रहे हैं, देखो मैं हूं जो कि मामला चलाता हूं, मैंने मामला चलाने, और मैं मामला पूरा उसके ऊपर कंट्रोल के साथ चलाता हूँ। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, ठीक है ना। लेकिन वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग जो है ना ये इल्म नहीं रखते इस बात का, शऊर नहीं रखते इस बात का, समझ नहीं रखते इस बात का कि अल्लाह ताला जो है ना वो मामलात को चलाने वाले हैं और वो बेहतरीन चलाने वाले हैं। भूल जाते हैं, याद भी दिलाते हैं। अल्लाह ताला देखें अपने बंदों के बारे में फरमा रहे हैं ना, मैं तो याद दिला रहा हूँ, लेकिन ये सुनते नहीं है, ये याद ही नहीं रखते, ये बात को समझते नहीं है। वलम्मा बलगा अशुद्दहु, और फिर वापस आ गए वाकये के ऊपर, फिर से कसरत में वापस आ गए। और जब लम्मा जब बलगा वो पहुंच गया अशुद्दहु अपनी यानी जवानी को, अपनी अपनी शिद्दत को, शिद्दत का मतलब पूरी उसकी पावर आ गई उसके अंदर, यानी बिकेम मेच्योर, जिसको गबरू जवान कहते हैं, ठीक है। जब वो ऐसे जवानी को पहुंच गया ना, तो क्या हुआ, आतैनाहू, हमने दिया उसको हुक्मन व इल्मन, ठीक है, हमने अता किया उसको क्या, हुक्म और इल्म, यानी हिकमत। ये हुक्म का लफ्ज जो है वो यहाँ पर हिकमत के मानी में, और इल्म। वकदालिक नजज़िल मुहसिनीन, और ऐसे ही, दैट्स हाउ नजज़ी, हम जजा देते हैं, अल मुहसिनीन द पायस, जो नेकोकार होते हैं, एहसान करने वाले। एहसान, एहसान का लफ्ज कल कल परसों जो हम हजरत शेखुल हदीस साहब का बयान सुन रहे थे, ठीक है, तो एहसान के लफ्ज, बल्कि नहीं सॉरी, वो उस बयान में नहीं था, वो बाद में एक और मजलिस में हजरत ने फिर मजीद बात करी थी कि भाई वो जो हदीस जिब्राइल है ना, जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और नबी अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं, मल इस्लाम, मल ईमान, मल एहसान, ठीक है। तो एहसान एक मुस्तकिल शोबा है हमारे दीन का, और ये लफ्ज जो है वो हुस्न से निकला। हुस्न यानी हसीन, कोई चीज खूबसूरत होती है, तो एहसान का मतलब क्या, एहसान मस्दर है, अहसना युहसिनु एहसानन। जो सर्फ पढ़े हुए हैं वो अच्छी तरह से इसको समझते हैं कि बाबे तो इफ़ाल से है, अहसना युहसिनु एहसानन। एहसान का मतलब क्या हुआ, हसीन बनाना, हसीन बनाना। तो मुहसिन कौन हुआ, फहुआ मुहसिनुन, इसम फाइल है इसका, मुहसिनुन हसीन बनाने वाला, हसीन बनाने वाला। तो मुहसिनीन कौन हुए, हसीन बनाने वाले। हम जजा देते हैं किनको, हसीन बनाने वालों को जजा देते हैं। किस चीज को हसीन, हसीन पेंटरी पेंटिंग बनाते हैं ये लोग, है ना, जो हसीन पेंटिंग बनाते हैं हम उनको बेहतरीन जजा देते हैं, नहीं, बल्कि अपनी नियतों को हसीन बनाते हैं, अपने कुलूब को हसीन बनाते हैं, अपनी फिक्रों को हसीन बनाते हैं, राइट, और अपने आमाल को हसीन बनाते हैं, ठीक है, अपने आमाल को हसीन बनाते हैं, तो हम उनको जजा देते हैं, ऐसे ही जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने जजा दी थी, ठीक है। तो अगर हमें जजा चाहिए अल्लाह ताला की तरफ से, तो हमें भी हसीन बनाने के, हम जो ये गंद गंद डालते फिरते हैं ना हर जगह, गंद अपनी फिक्रों में भी गंद, राइट, अपने जुबान के अंदर भी गंदगी, और अपने जो है वो अमाल भी जो है वो हमारे सड़े हुए बहुत बुरे किस्म के अमाल होते हैं, तो भाई हम कहाँ से मोहसिनीन के अंदर आ जाएंगे, फिर हम कैसे आएंगे मोहसिनीन के अंदर, और अगर मोहसिनीन में नहीं आएंगे तो फिर हमें तो फिर जजा नहीं मिलेगी ना, ठीक है। वरावदत हु अल्लती हुआ फी बैतिहा, रावदा युराविदु, बासरा यु बासरु के वजन पर, ये चार लेटर वाला लेटर वर्ड है। तो रावदत के उसने फुसलाया, यानी उस औरत की बात हो रही है जो कि यूसुफ यानी उस खरीदने वाले की, अल्लज़िश्तराहू की जो इमरा थी, उसने क्या किया, रावदत हु, उसने फुसलाया उसको, अल्लती हुआ फी बैतिहा, वो कौन हुआ फी बैतिहा, वो यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम, हुआ का मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम, फी बैतिहा उसके घर के अंदर थे, यानी वो घरवाली थी, वो उस घर की जो है वो मालिकन थी जिसके घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, उसने फुसलाया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अन नफ्सी ही, अपनी अपनी तरफ माइल किया, गुनाह की तरफ, यानी औरत थी तो वो मर्द को जो है वो गुनाह की तरफ माइल करती है, तो अन नफ्सी ही, और क्या किया उसने, वह गल्लकत अल अबवाबा, ठीक है, दरवाजे को को उसने जो है वो लॉक कर दिया, गल्लक युगल्लिको, ठीक है, ना लॉक कर देना, बंद कर देना। तो उसने दरवाजे को बंद कर दिया, बल्कि एक दरवाजे को बंद नहीं किया, बाब को बंद नहीं किया, अबवाब को बंद किया, सारे दरवाजे बंद कर दिए, ठीक है। और किताबों में तो ये भी लिखा हुआ है कि ये नहीं कि एक ही कमरे के कई दरवाजे थे, बल्कि नहीं, जिस कमरे में थे उसका एक दरवाजा था, फिर वो कमरा एक बड़े कमरे के अंदर था, जैसे होता है ना हॉल के अंदर एक कमरा होता है, तो हॉल के दरवाजे को भी बंद कर दिया। फिर उसके बाद मजीद एक जो थी, जो 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 इमारत थी उसमें एक और दरवाजा था, उस दरवाजे को भी बंद कर दिया। फिर उसके बाद एक और दरवाजा था, उस दरवाजे को भी बंद कर दिया, ठीक है ना। यानी लेयर्स अपॉन लेयर्स में इनको जो है वो अंदर बिल्कुल बिल्कुल दरमियानी कमरे के अंदर ला करके इसने ये वाला काम किया कि राबदतहू अन नफ्सी, वकालत, और क्या कहा उसने, उसने कहा, उस औरत ने कहा, हई तलक, जल्दी से आ जाओ तुम, ओ यू लका, आई एम टॉकिंग टू यू, हई ता, फौरन से, ठीक है ना। काला, उसने कहा, किसने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, माज अल्लाह, ठीक है, यानी मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, ये आऊज़ जो है यही माज अल्लाह, ठीक है, अल्लाह ताला की पनाह। माज जो है वो इस्म ज़र्फ़ का सीगा हुआ, यानी वो जगह जहां पर पनाह मिलती है, ठीक है, हिफाजत मिलती है, तो अल्लाह की पनाह। इन्नहु रब्बी, बेशक मेरा जो रब है, मेरा रब, अहसना मसवाई मसवाया, ठीक है, उसने बेहतरीन ठिकाना दिया मुझे, मेरा रब, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा रब है। और यहाँ पर जो रब्बुल बैत है, यानी वो जो अजीज है मिस्र, ए वो औरत, तुम्हारा जो शौहर है ना, वो मेरा रब्बुल बैत भी तो है, ठीक है, यानी जो मुझे इस जगह पे रखा हुआ है, मेरी परवरिश कर रहा है, मुझे खाना पीना दे रहा है, मुझे कपड़े लत्ते दे रहा है, ठीक है ना। तो उसने मुझे कितने अच्छे ठिकाने के अंदर रखा हुआ है। ऊपर उसने अपनी बीवी को कहा भी था, अकरमी मसवाहु, इसको बेहतरीन ठिकाने के अंदर रखो, इकराम के साथ रखो। तो उसने मुझे इतने अच्छे ठिकाने में रखा हुआ है, इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक जो जुल्म करने वाले होते हैं वो तो फलाह नहीं पा सकते, वो तो कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्या मतलब, उसने मुझे अच्छे ठिकाने में रखा और जुल्म करने वाले तो कामयाब नहीं हो सकते, तो क्या मतलब कि मैं अगर उसकी अमानत में खयानत करूंगा, उसकी बीवी के साथ जो है वो मैं गुनाह का काम करूंगा, तो ये उसकी अमानत में खयानत होगी और मैं जालिम बन जाऊंगा, मैं जुल्म करने वाला बन जाऊंगा। गुनाह के लिए जुल्म का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, इस्म का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, और तीसरा क्या लफ्ज, तो मैं गुनाह करने वालों में शामिल हो जाऊंगा और गुनाह करने वाले कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कोई कौम जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ करके कामयाब नहीं हो सकती, बिल्डिंगें बना करके कामयाब नहीं हो सकती, अगर वो गुनाह भी साथ साथ कर रही है। दुनियावी तौर पर थोड़ी बहुत कामयाबी उसको मिल जाएगी, लेकिन एक तो उसको इत्मीनान, सुकून, हिफाजत, इज्जत, ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। और फलाह जो है ना, ये तो मुकम्मल कामयाबी हो कहते हैं, छोटी मोटी कामयाबी के लिए फलाह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। तो ला युफ्लिहु ज़ालिमून, ये अल्लाह ताला ने उसूल बता दिया, ला युफ्लिहु ज़ालिमून, गुनाह करने वाले जो है वो कामयाब नहीं होते। आज जो है वो सारे के सारे लगे हुए हैं कि जी पाकिस्तानियों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं पढ़ी, और पाकिस्तानियों ने जो है वो बिल्डिंगें ज्यादा अच्छी नहीं बनाई, पाकिस्तानियों ने जो है वो गाड़ियां अच्छी नहीं बनाई आज तक, और पाकिस्तानियों ने ये अच्छा नहीं बनाया, वो अच्छा नहीं बनाया, है मतलब कामयाबी के लिए आपको ये सारे काम करने थे। तो भाई आप गुनाह की तो बात ही नहीं करते हैं कि भाई उनको पाकिस्तानियों ने गुनाह नहीं छोड़े, पाकिस्तानियों ने जो है वो अल्लाह ताला की नाफरमानियां नहीं छोड़ी, तो इस वजह से वो कामयाब नहीं हुआ, है ना, ठीक है। तो वही काफिर, काफिर वाला कॉन्सेप्ट, मौलवी साहब के मुंह से भी काफिर वाली बातें सुनने को मिले, तो फिर क्या करे बंदा, है ना, कि भाई ये नहीं बनाया इस वजह से जो है वो कामयाब नहीं हुए। खुलासे खुलासे तफसीर, इस तर्जुमे के बारे में किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। खुलासे तफसीर में फरमाते हैं कि काफले वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों से खरीद कर मिस्र ले गए, वहां अजीज मिस्र के हाथ फरोख्त कर दिया, और जिस शख्स ने मिस्र में उनको खरीदा था यानी अजीज, उसने उनको अपने घर लाकर अपनी बीवी के सुपुर्द किया। ठीक है, तो जो पहली आयत के अंदर जो जिक्र था, अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिइम्राती ही, तो और फिर आके उसने अपनी बीवी से कहा कि उसको खातिर से रखना। खातिर का मतलब है इकराम के साथ रखना। क्या अजब है कि बड़ा होकर हमारे काम आएगा या हम उसको बेटा बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह की बात जो है वो फिरौन की बीवी आसिया, उन्होंने भी मूसा अलैहि सलाम के बारे में कही कही थी ना कि हम ये हमारे फायदे का होगा या हम इसको बेटा बेटा बना लेंगे। ठीक है, ये मेरी आंखों की ठंडक है, अभी हजरत से सुना था हमने। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा मामला, यहाँ पे बीवी ये बातें नहीं कर रही, यहाँ पे जो है वो शौहर ये वाली बातें कर रहा है। और वहां क्या मामला हुआ था मूसा अलैहि सलाम के साथ, वहां पे बीवी ने ये वाली बातें करी थी, शौहर ने ये वाली बातें नहीं करी थी। ठीक है, तो जो हमारे मशायख फिर इसकी इसकी तशरीह करते हैं कि जी अगर फिरौन भी जो है ना वो कह देता ना इस तरह की बातें जैसे कि आसिया ने कही थी, तो फिरौन को भी जो है वो तौबा की तौफीक मिल जाती, ईमान की तौफीक मिल जाती। लेकिन चूंकि सिर्फ आसिया ने कही थी, फिरौन ने कहा था मुझे इसकी हाजत नहीं है, ला हाजत लहू। ठीक है, तो फिरौन को तौफीक नहीं मिली और आसिया को ईमान की अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमा दी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे अजीज मिस्र ने ये बात करी और जुलैखा ने ये बात, उसकी बीवी ने ये बात नहीं करी। ठीक है, तो लेकिन बीवी ने कोई गंदी बात भी नहीं करी, वहां पे फिरौन ने गंदी बात करी थी। ठीक है ना, मुझे कोई कोई हाजत नहीं है मुझे इसकी। इधर क्या हुआ, यहाँ पर जो है वो अजीज मिस्र ने बात करी, उसको अल्लाह ताला ने बाद में नेकी की तौफीक अता फरमा दी। ठीक है, और बीवी ने जो है वो कोई उल्टी बात भी नहीं करी, लेकिन उसने हाँ में हाँ नहीं मिलाई, अच्छी बात को असिस्ट नहीं किया उसने, अच्छी बात को उसने जो है वो आगे नहीं बढ़ाया। तो इसके नतीजे में उसके साथ क्या हुआ, जलील और रसवा हुई, लेकिन बिलाखिर ईमान की तौफीक उसको भी मिल गई। ठीक है, बिलाखिर जुलैखा भी जो है उसने भी तौबा कर ली और वो भी जो है वो फिर नेक सालेहा बन गई। ठीक है, तो देखें कितनी प्रिसिशन है अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ, क्या ना, एक एक चीज जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ नोट हो रही होती है और उसके बदले में जो है ना वो उसका यानी मामला किया जा रहा होता है। इतनी प्रिसिशन दुनिया के अंदर है जिस परवरदिगार के यहाँ, तो सोचें आखिरत के यहाँ जहाँ पे के यानी आलम अमर वाला मामला होगा तो वहां पे कितनी प्रिसिशन होगी। जब दुनिया के अंदर इतनी प्रिसिशन है, मोहब्बत की निगाह एक वली अल्लाह के ऊपर डाल दी, कितने सालों के बाद भी अल्लाह ताला ने चुकाया उसको, और किसने अल्लाह वाले के बारे में बुरी बात करी थी, इतने साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उसको चुका दिया। ठीक है, तो तसव्वुर करें अल्लाह ताला क्या जाना, ये चीजें भुलाई नहीं जा रही होती। ठीक है ना, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम वुड इट बी, है ना, ये क्या फिर तो वल्लाहु ग़ालिबुन अला अमरिही कहने के फिर क्या मकसद बन जाता है कि अल्लाह ताला अपने उमूर के ऊपर गालिब है, जब बंदे कोई काम करें और अल्लाह ताला जो है ना वो मिस आउट कर जाए उन बातों को, है ना, और जो है वो उसके ऊपर ना तो उनको कोई जजा मिले, अच्छे कामों के ऊपर ना जजा मिले और बुरे कामों के ऊपर ना सजा मिले, तो भाई व्हाट काइंड ऑफ ए सिस्टम दैट इज, राइट। ये तो बहुत ही फूल, जिसको कहते हैं यानी फूल प्रूफ तो नहीं है, फूल प्रूफ का जो यानी फॉल्टी सिस्टम हो गया ना ये तो। ठीक है, नहीं, अल्लाह ताला का सिस्टम बिल्कुल भी फॉल्टी नहीं है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अल्लाह ताला हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं और उसके मुताबिक जो है वो लोगों के साथ मामला होता है। और आखिरत तो उधार का मामला है, बाद में मरने के बाद आखिरत बहुत अरसे के बाद जाकर आएगी, नकद मामला हो रहा होता है, नकद मामला। इसी दुनिया के अंदर उसको जो है ना वो गुनाहों के ऊपर सजा मिल रही होती है और इसी दुनिया के अंदर नेकियों के ऊपर जजा मिल रही होती है। ठीक है ना, बस शक्ल सूरत जो है वो ऐसी होती है कि वो हर बंदे को नजर नहीं आ रही होती है, लेकिन मिल जरूर रही होती है। ठीक है, ये सिस्टम इस दुनिया के अंदर ही चल रहा है, काफिर को सजा मिल रही होती है इसी दुनिया के अंदर, मोमिन को जजा मिल रही होती है इसी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो फरमाया कि हमारे काम आएंगे या हम उसको बेटा बना लेंगे। यहाँ से बात उधर चली गई थी मूसा अलैहि सलाम की और फिरौन और आसिया के बारे में बात शुरू हो गई थी, तो वापस आते हैं कि मशहूर ये है कि ये इसलिए कहा कि उनकी औलाद नहीं थी, उन दोनों की भी औलाद नहीं थी, इन दोनों की भी औलाद नहीं थी। और हमने जिस तरह यूसुफ अलैहि सलाम को अपनी खास इनायत से इस अंधेरे कुएं से निजात दी थी, इसी तरह यूसुफ अलैहि सलाम को इस सरजमीन मिस्र में खूब कुव्वत दी, मुराद इससे सल्तनत है, लेकिन अभी तो सल्तनत नहीं मिली है, अभी तो जो है वो खाली फिजिकल पावर मिली है और खाली जो है वो रहने का ठिकाना मिला है, अगरचे के बहुत अच्छा ठिकाना मिला है, महल के अंदर रह रहे हैं, अच्छा खाने को मिलता होगा, अच्छा पीने को मिलता होगा, घर वाले भी इज्जत से मामला रखते होंगे, ये भी जो है वो कुव्वत और इज्जत में आता है ये सारा कुछ, और बाद में जाकर के जो है वो पूरे मुल्क की जो है वो बादशाहत भी मिली। ठीक है, तो और ये निजात देना इस गर्ज से भी था ताकि हम उनको ख्वाबों की ताबीर देना बतला दें, ठीक है ना, यानी जो निजात दी वहां पर भी मार देने का इंतजाम तो किया हुआ था भाइयों ने, अब इतने गहरे अंधेरे कुएं के अंदर, तो भाई वो डिप्रेशन से बंदा मर सकता है, या जो है वो अंदर कोई 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 सांप होता, कोई बिच्छू होता, बेशक उन्होंने कत्ल की नीयत से कोई गर्दन गला काट करके नहीं कुएं में डाला था, लेकिन कुएं के अंदर जब कोई इंसान जब जाता है तो फिर उसके मरने की पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो वहां पर भी अल्लाह ताला ने बचा लिया, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे मिस्र में ला करके भी अल्लाह ताला ने पूरा हिफाजत के साथ जो है वो मिस्र तक पहुंचा दिया। मौत आनी होती है तो इंसान जो है वो नरम गरम बिस्तर के ऊपर, अल्लाह ताला उसको नहीं बचाते, ठीक है ना, छोटा सा एक वायरस लगता है और उस वायरस के जरिए से जो है वो मौत के मुंह के अंदर चला जाता है, ठीक है ना, और उसके अलावा बड़े जो है वो बड़े भी जराए बहुत सारे होते हैं, अल्लाह ताला के कुदरत के अंदर वायरस से भी अल्लाह ताला बंदा मार देते हैं, और जो है वो कोई क्या कहते हैं आजकल जो बम गिरा रहे हैं, राइट, पता नहीं फॉस्फोरस बॉम्ब तो क्लस्टर बॉम्ब तो फलाने बॉम्ब, है ना, जिससे कि पूरा का पूरा जो है वो एक एरिया जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है, अल्लाह ताला उसके जरिए से भी बंदों को राइट यानी चलता कर सकते हैं, चलो भी नेक्स्ट वर्ल्ड में, चलो भी नेक्स्ट वर्ल्ड के अंदर, या अल्लाह ताला जमीन को हिला सकते हैं, पूरी जमीन शेक होनी शुरू हो जाए और उस जमीन के शेक होने के बाद चलो भी नेक्स्ट वर्ल्ड के अंदर लेट्स गो, ठीक है ना, सैलाब आ सकता है, तूफान आ सकता है, बारिश हो सकती है, ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, और कुछ तो नहीं तो जो पानी पी रहा है वो पानी फंस जाए और उसी के जरिए से लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ल्ड, चलो भाई यहां से चलो, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला के निजाम में चलता भी करना ये भी अल्लाह ताला के निजाम का हिस्सा है, और किसी ऐसे को जो कि बजाय चल लगता है कि बस अब तो ये गया उसको अल्लाह ताला रख लेते हैं, ठीक है ना, सारी दुनिया जो है वो दुनिया से यानी जहाँ से जा रही है और माशाल्लाह बुजुर्ग साहब जो है वो दुनिया के अंदर है, चले चले जा रहे हैं माशाल्लाह, चले चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो भाई अल्लाह ताला ये काम क्यों करते हैं, किसी को आगे भेज देते हैं, भाई इस दुनिया के अंदर उनसे काम नहीं लेना था बराह रास्त, इस दुनिया में उनसे काम नहीं लेना था बराह रास्त, काम नहीं लेना था, हाँ ये हो सकता है कि किसी को दुनिया से आगे भेज दिया, बच्चे को भेज दिया, अब उस बच्चे से जवानी में काम नहीं लेना था अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर तो उसको आगे भेज दिया, लेकिन उससे इनडायरेक्टली काम लिया जा रहा है कि उसके माँ बाप के लिए ये आजमाइश हो गई ना, अब वो देख रहे हैं कि जी माँ बाप जो है ना वो इसके ऊपर सब्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इवन किसी का मर जाना इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला उससे भी अपने मकसद हासिल कर रहे होते हैं, है ना, कि खानदान वालों ने उसके ऊपर कैसा रिएक्शन किया और जो है वो लोग उसके बारे में कैसी बातें कर रहे हैं और उसके ऊपर अल्लाह ताला को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो बंदा तो गया उसने तो कुछ नहीं करना है इस दुनिया के अंदर, लेकिन अल्लाह ताला उससे भी काम ले रहे हैं इनडायरेक्टली, लेकिन जिसको अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर रख रहे हैं ये कैसे हो सकता है कि जाने वाले से तो अल्लाह ताला काम ले रहे हैं अपनी दुनिया के अंदर, लेकिन जिसको रखा हुआ है उसको फालतू में रखा हुआ है, उसको बेकार में रखा हुआ है, कोई पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, नहीं उसका पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है, ही इज नॉट हेयर विदाउट ए पर्पस और शी इज नॉट हेयर विदाउट ए पर्पस, उसको अल्लाह ताला ने किसी काम के लिए रखा हुआ है ना, किसी काम के लिए रखा हुआ है, अब वो ये काम अपनी मर्जी से अगर नेकी का करेगा तो उसको सवाब भी देंगे, ठीक है ना, ये नहीं कि भाई मैंने तुम्हें काम के लिए रखा था अब तुमको किस किस चक्कर में सवाब मिले, व्हाई शुड आई पे यू एनीथिंग, तुम्हें तो मैंने रखा हुआ है और अपने काम से रखा है, मैं तुमसे काम ले रहा हूँ तो तुमको किस यानी कहते हैं ना भाई तुमको क्यों सवाब दूं मैं, नहीं अल्लाह ताला ये भी नहीं करते, नेक बंदे जो नेकी का काम कर रहे होते हैं अल्लाह ताला उनको ऊपर से सवाब भी दे रहे हैं, जन्नत के अंदर दर्जात भी दे रहे हैं, हालांकि रखा तो अल्लाह ने है ना इस दुनिया के अंदर उनको, उसी तरीके से अल्लाह ताला जो है फिर दूसरे बंदों को भी रखते हैं जो कि अपने इल्म और इरादे के साथ जो है वो गुनाह का काम कर रहे होते हैं, और उससे जो है वो दुनिया के अंदर लोगों के लिए आजमाइशों का इंतजाम अल्लाह ताला करवा रहे होते हैं। लेकिन रखा हुआ तो अल्लाह ही ने है ना, अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर तो दुनिया में कोई नहीं रह सकता। शैतान अल्लाह की मर्जी के बगैर दुनिया के अंदर मौजूद है और जिंदा है और इतने सारे लोगों को बहका रहा है या बहकाने की कोशिश कर रहा है कम अज कम। नहीं, अल्लाह ताला की मर्जी से वो यहाँ पर है और मर्जी से ही जो है वो बहकाने का काम कर रहा है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है, शैतान हमारे लिए एक आजमाइश है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से एक बच्चा जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसके वालदैन के लिए आजमाइश बन जाता है, ये हर चीज एक आजमाइश के लिए है। ठीक है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने यहाँ पे रखा तो उसकी एक जो लार्जर रीजन था वो अल्लाह ताला ने अपने कलाम के अंदर हमें बता भी दिया कि हमने लिनुअल्लिमहु मिन तअवील अहादीस, हमने उसको यहाँ पे इसलिए रखा ताकि हम उसको अहादीस का इल्म अता फरमाए। ठीक है, और फिर इस अहादीस के इल्म से उन्होंने कोई अपना वो चलाना था, फॉर्चून टेलिंग है, ये फोर टेलिंग के मतलब जिस तरह से होता है ना कि मैं तुम्हें बताऊं कि जी वो जाविये जायचे निकाल निकाल के, ये मकसद था उनको कि ख्वाबों की ताबीर, लोगों से पैसे लेकर के उनको ख्वाबों की ताबीर बताना शुरू कर दे। नहीं, ख्वाबों की ताबीर भी एक मकसद के लिए थी, बहुत बड़ा वो मकसद था जो कि आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो भाई इस सारी की सारी जो टेंजेंट में जाकर के इतनी सारी बातें करनी, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यही था कि भाई हाउ कैन वी फॉरगेट दीज थिंग्स, हम इन बातों को कैसे भूल जाते हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इन्वॉल्वमेंट को हम कैसे इग्नोर करके जो है ना वो हम पिक्चर से अल्लाह ताला को निकाल देते हैं। हमारा बहुत बुरा हाल है, हम अल्लाह ताला से गाफिल हुए हैं ना, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि तस्बीह नहीं फेरते, राइट, जिक्र नहीं करते जी, तस्बीह नहीं फेरते या मुराकबे नहीं करते, इस वजह से अल्लाह से गाफिल है। नहीं, अल्लाह से गाफिल होने का मतलब ये भी है कि आप दुनियावी उमूर के अंदर आपको अल्लाह क्यों नहीं नजर आता, राइट, आप अल्लाह से गाफिल क्यों हैं? हमारा तो ये हाल हुआ हुआ है दुनियावी उमूर में अल्लाह से गाफिल होना, तो हम तो दीनी उमूर के अंदर अल्लाह से गाफिल हो रहे हैं। हम दीन को जो है ना वो हमने निजामे वो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ, इस्लाम जो है वो निजामे हयात है, ठीक है ना। तो मतलब इस बात के कहने का क्या था ना, वो मतलब तो हमने समझा नहीं, वो मतलब ये था कि भाई आप सुन्नत के ऊपर जो है वो जाहिरी तौर पर भी अमल करें और आप जो है वो काफिरों के तौर तरीकों के बजाय जो है वो सहाबा के तौर तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारें, है ना। तो इस्लाम को खाली आप ये नहीं समझें कि जी मस्जिद में जाएंगे तो वहां पे टकरे मार के आ जाएंगे बस ये इस्लाम है, या खाली जो है वो जानमाज बिछा करके आपने चंद नमाजें पढ़नी तो ये इस्लाम है। नहीं, इस्लाम जो है वो आपकी पूरी जिंदगी पर मुहित है, ये इसका मतलब था। लेकिन शैतान ने हमसे इसका कुछ और मतलब निकलवा लिया। हमने क्या किया कि जैसे जैसे हमारी जिंदगी में इस्लामी रिवायात और इस्लामी इबादात और इस्लामी अफआल और आमाल दाखिल हुए ना, तो हम जो है ना वो उन आमाल के अंदर इतने मगन हो गए कि हमने उन आमाल में से भी अल्लाह को निकाल दिया। अब नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला की रजा के लिए जो काम करने थे और अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक और नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई प्रायोरिटीज के मुताबिक वो काम करने थे, उनको हमने छोड़ दिया। और अब जो है ना हम रिवायती तौर पर दीनी अमाल कर रहे हैं, दीनी अफाल कर रहे हैं रिवायती तौर पे। वो कर रहा था तो उसने हमें बता दिया, हमने भी ऐसे करना शुरू कर दिया। ये हमारे अम्मा बा करते थे तो ये हमारे खानदान की ये एक रिवायत है, तो हम खानदानी रिवायत के अलमबरदार होने की वजह से हम भी जो है वो इन इन, इन दीनी उमूर को सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इनके अंदर हम यानी अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की रजा और राइट, अल्लाह की बताई हुई जो तरतीब थी उस तरतीब को हमने बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया। तो ये भी फिर इसी माने में आता है कि हमने दुनियावी उमूर में तो अल्लाह को भुलाया ही सही, हमने दीनी उमूर के अंदर भी अल्लाह को भुला दिया। ठीक है, तो ये जो दीन होता है ना, ये इसी को कहते हैं कि रूहानियत से। आज आज शेख लदी साहब से बात हो रही थी कुछ, तो उन्होंने बड़ी मजे की बात करी कि बताओ बहैसियत दीन, बड़ी यानी बहैसियत दीन जो है ना, जब अदियान का मुकाबला किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई और दीन जो है वो इस्लाम के करीब करीब भी नहीं आ सकता, इस्लाम ही हकीकत है। इस्लाम ही दीन है, ठीक है ना। लेकिन मसला कब पड़ जाता है, मसला ये पड़ता है कि जब हमारा मादियत से मुकाबला होता है ना, तो उस वक्त जो है ना, वो हम दीनदार हजरात जो हैं, दाढ़ी टोपी वाले और आलिम कोर्स वाले, और है ना, जब मादियत से हमारा मुकाबला होता है ना, तो वहां पर हम फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं, हालांकि इतने दीनदार हैं, इतना दीन का इल्म है, इतनी दीन की जो है वो यानी अफाल व अमाल कर रहे हैं, तो फिर मादियत से जब हमारा मुकाबला होता है, हम फेल क्यों हो जाते हैं? उसकी यही वजह होती है, यही फरमा रहे थे, क्योंकि हमारे पास रूहानियत नहीं है। हमारे पास जो है ना, वो दीन भी एक मादी शक्ल का दीन है, जाहिरी अफाल है, ये हमारा दीन है। तो भाई ये जाहिरी अफाल तो मादियत की डेफिनेशन में आते हैं, रूहानियत इस दीन के अंदर कैसे आएगी? रूहानियत तो उस वक्त आएगी जबकि दीनी अफआल के अंदर आप अल्लाह ताला को शामिल रखें, अल्लाह का हुक्म जो है वो हर वक्त आपके सामने रहे, और साथ साथ बार बार ये आजिज़ ये बात कह रहा है, तरतीब सामने रहे, अल्लाह की बताई हुई तरतीब सामने रहे। क्या मतलब? ईमान और अकायद सबसे अहम, नंबर 1 ईमान और अकायद, नंबर 2 फराइज, नंबर 2 फराइज, नंबर 3 वाजिबात, अगर थोड़ा सा हनफी फिर के मुताबिक फराइज वाजिबात को अलग अलग करके, तो नंबर 2 इज फराइज, नंबर 3 इज वाजिबात। जैसे वितर की नमाज वाजिब है, फर्ज नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो सुनन, सुन्नतें नबी अलैहिस्सलाम की, और फिर उसके बाद मुस्तहबात। ये है तरतीब। हम यानी हम दीनी अफाल कर रहे हैं दे धनाधन, राइट, और ना तो हमें अल्लाह का हुक्म याद रह रहा होता है, ना हमें अल्लाह ताला की रजा याद रह रही होती है, ना हमारी नियतें जो है वो अल्लाह की खातिर हो रही होती हैं, ना हम अल्लाह की बताई हुई तरतीब का ख्याल रख रहे होते हैं। मुस्तहबात के पीछे लगे हुए फराइज को छोड़ रहे हैं, राइट, या जो है वो फराइज अगर कर भी रहे हैं तो ईमानियात की फिक्र कोई नहीं है, हालांकि ईमानियात वॉज मोर इम्पोर्टेंट, अकायद वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन फराइज, लेकिन ये तरतीब हम बिल्कुल भी इससे गाफिल हैं। तो इसी वजह से ना, मादियत के साथ जब हमारा मुकाबला होता है दीनदारों का, तो हम फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम दीन को भी हमने मादियत बना दिया, और वो हमारी जो दीन के अंदर मादियत है ना, वो भी लूड़ी लंगड़ी, लूड़ी लूली और लंगड़ी, लूली लंगड़ी दीन, मादी दीन, लूला 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 लंगड़ा, जबकि वो जो मादियत के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, वो कामिल मेहनत कर रहे हैं मादियत के ऊपर, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं मादियत के ऊपर, मुस्तकिल उनकी फिक्र सोच, उनकी मोहब्बत का मरकज जो है वो मादियत की मेहनत है, जबकि हमारी हमारी जो हमारा जो दीन, मादी दीन जो है हमारा, वो हमारा फोकस ही कोई उसके ऊपर नहीं। तो भाई अब क्या मुकाबला है इन दोनों चीजों का? उनके पास भी मादियत, हमारे पास भी मादियत, लेकिन उनकी मादियत ताकतवर और हमारी मादियत टेढ़ी थी तिरछी लूली लंगड़ी। तो अब जब ये मुकाबला होगा तो फिर उसके बाद कौन जीतेगा? वही ना, जिसके पास मादियत जो है वो ज्यादा मजबूत है, वही जीतेगा। भाई हमें तो रूहानियत चाहिए थी ना इस दीन के जरिए से, जिसने के माद जिसके सामने मादियत की कोई हैसियत ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं मादियत के सामने, मादियत की उस रूहानियत के सामने, यानी अल्लाह, अल्लाह की मदद। जब अल्लाह की मदद हो तो एटम बम और क्रूज मिसाइल और एस्पियोनाज सिस्टम और सर्वेलेंस सिस्टम और सैटेलाइट वॉरफेयर, क्या हैसियत है इन चीजों की? अल्लाह के मुकाबले में कोई हैसियत है इन चीजों की? लेकिन मुसलमान दीनदार, बस दुनियादार मुसलमान की कोई बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम दीनदार मुसलमान की बात कर रहे हैं। दीनदार मुसलमान के पास इस वक्त अल्लाह का साथ नहीं है, अल्लाह ताला उसके साथ शामिल हाल नहीं है, क्योंकि उसने अल्लाह ताला को जगह ही नहीं दी हुई अपने दीन के अंदर, ठीक है ना। तो अब ऐसे मौलवियों का या ऐसे दीनदारों का, मौलवियों से यहाँ पे मुराद उलमा अकाबरीन की का बिल्कुल भी मकसद नहीं है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला का निज़ाम है, लोग नहीं उनकी बात सुन रहे हैं, ठीक है ना। उनके जो मुरीद हैं, उनके जो शागिर्द हैं, चक्कर देने में लगे हुए अपने बड़ों को, ठीक है, तो उनका कसूर नहीं है, ये तो हमारा कसूर है ना, ठीक है। तो हमारा दीन भी जो है ना, फिर वो हमें बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपने लिखा, जज़ाकुमुल्लाह। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये हाल है इस वक्त के मुसलमान का, ठीक है ना। ना जो है वो बुत परस्त बना, काफिरों की तरह से, कि वो पूरा का पूरा मादियत परस्त बनता और पूरा का पूरा जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो अपनी तवज्जो लगाता, है ना, बिल्कुल एक होकर के काम कर रहा होता। वो भी इसने नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है, वरना तो हमेशा हमेशा की जहन्नम उसको मिलती। अगर वो विसाले सनम के चक्कर में पड़ता तो फिर तो हम हमेशा हमेशा के जहन्नुम वाले बन जाते ना। लेकिन बदकिस्मती से हमने खुदा को भी शामिल हाल नहीं किया, ठीक है ना। हर वक्त जो है ना वो अपनी अकल, दीन पे भी करना है ना, दीनी काम भी करना है ना, तो अपनी अकल की बुनियाद पर करना है, खब्बुन लईमुन के जरिए से के तरीके पे दीन का काम करना है, गिर्रुन करीमुन के तरीके पे दीन का काम नहीं करना। अलमुमिनु गिर्रुन करीमुन वल काफिरु खब्बुन लईमुन। हम दीन में भी जो है ना वो खब्बुन लईमुन, यानी बहुत ही जो है ना वो मक्कारी और कनिंगनेस और जो है वो 420 और चक्करबाजी, राइट, ये चक्करबाजी वाला दीन है हमारा। टू मच, यू नो, टू मच आईक्यू आ गया है, छलक रहा है हमारा आईक्यू, संभाला नहीं जा रहा हमसे हमारा आईक्यू, ठीक है ना। तो जब आप अपनी अकल ऐसी जो है वो दीन के अंदर घुसेड़ेंगे तो फिर अल्लाह ताला के चलो भी करो तुम अपनी अकल की बुनियाद पर इस दीन के ऊपर अमल, अपने इदारों को अपनी अकल की बुनियाद पर खुद ही तुम हिफाजत करो इनकी। नहीं, जब भी जो है वो हर वक्त मदारिस की हिफाजत, मदारिस की हिफाजत, अल्लाह ताला मदारिस की हिफाजत क्यों नहीं करता तुम्हारे, राइट। खुद जो है वो हर वक्त डिप्लोमेसी, खुद जो है वो हर वक्त क्यों नहीं कर रहे हैं हम। खुदा वाला जो मामला है ना उसको, उसका हम नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। बहुत, वी हैव सीरियस प्रॉब्लम्स, सीरियस प्रॉब्लम। जब खुदा को आपने निकाल दिया ना मामलात के अंदर, और बस जो है वो मामूलात सारे, पढ़ने पढ़ाने वाला दीन और वो तस्बीह फेरने वाला दीन और वजीफे पढ़ने वाला दीन, ठीक है, ऐसे नहीं काम होता है यार, ऐसे नहीं काम होता। बहरहाल अल्लाह ताला ने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को रखा है ना, अल्लाह ताला फिर खूब अच्छी तरीके से उनसे काम लेंगे और अल्लाह ही काम लेने वाले हैं। मतलब ये था कि निजात देने का मकसद जो है उनको जाहिरी और बातनी दौलत से मालामाल करना था, और अल्लाह ताला अपने चाहे हुए काम पर गालिब और कादिर है, जो चाहे कर दे। लेकिन अक्सर आदमी नहीं जानते इस बात को, ठीक है, अक्सर आदमी इस बात को नहीं जानते क्योंकि अहले ईमान व यकीन कम ही होते हैं, ठीक है। ये मजमून किस्से के दरमियान बतौर जुमला मुतरिजा के इसलिए लाया गया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौजूदा हालत यानी गुलाम बनकर रहना बजाहिर कोई अच्छी हालत नहीं थी, मगर हक तआला ने फरमाया कि ये हालत चंद रोजा बतौर जरिए के है, असल मकसद उनको ऊंचा मुकाम अता फरमाना था और उसका जरिया अजीज मिस्र को और उसके घर में परवरिश पाने को बनाया गया। क्योंकि हम मुरा के घर, ये इंशाल्लाह अगली क्लास में ये बात करेंगे, अभी जो है वो टाइम मुकम्मल हो गया है। बस एक बात जो अभी दिल में आई, एक जुमला खाली है कि ये जो ट्रांजिशनरी पीरियड होता है ना, ट्रांजिशन, ठीक है, जब हम सफर करते हैं तो उसके अंदर भी एक होता है ना ट्रांजिट, है ना, गल्फ एयर से जब आप पाकिस्तान इंडिया जाते हैं तो बीच में आपको बहरीन में ट्रांजिट करना पड़ता है, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती, ठीक है। तो वो जो ट्रांजिट वाला टाइम होता है ना, ये बड़ा कुफ कुफ कुफताने वाला टाइम होता है कि यार घर के रास्ते पर भी हैं लेकिन घर भी नहीं पहुंच रहे, यहाँ पे उतरना पड़ रहा है और यहाँ पे जो है वो अगली फ्लाइट का इंतजार करना पड़ रहा है, तो ये एक मुश्किल होता है, ट्रांजिट टाइम जो होता है ना मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन ट्रांजिट टाइम जो है वो सफर के अंदर हमेशा ट्रांजिशनरी, सफर जो है वो बिल्कुल छलांग मार करके आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते। ये यहाँ से बीम हो, स्कॉटी बीम, या वो बचपन में स्टार वॉर्स वगैरह क्या था वो उसका नाम, है इधर से बीम आउट हुए उधर जो है वो बीम इन हो गए, ऐसे नहीं होता। बल्कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने असबाब का निजाम बनाया, आपको जहाज पे सफर करना पड़ेगा या आपको टैक्सी पे सफर करना पड़ेगा या बस में सफर करना पड़ेगा, रेलगाड़ी में सफर करना पड़ेगा। तो ये जो सफर का टाइम है दिस इज डिफिकल्ट, ठीक है ना, ये मुश्किल वक्त होता है। फरमाया तो उसी तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो ये वाला ट्रांजिट टाइम था ये मुश्किल था, लेकिन तवज्जो उनकी चूंकि अल्लाह ही के ऊपर मुस्तकिल थी, फोकस। आप बेशक आप बहरीन में बैठे हुए इंतजार कर रहे होते हैं, आप दुबई में बैठे हैं, आप जद्दा में बैठे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप भूल तो नहीं गए ना कि मुझे तो कराची जाना था, मुझे तो लाहौर जाना था, मुझे तो दिल्ली जाना था, भूल जाते हैं आप। और जद्दा में जाकर के मगन है, हम यही यही मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है, बहरीन यही मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है। अगर आप भूल गए तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने मकसद को फरामोश कर दिया, जिस मकसद से आप घर से निकले थे। नहीं, ट्रांजिट के अंदर मुश्किलात जरूर होती हैं लेकिन मंजिल को नहीं भूला जाता, मंजिल की तरफ से फोकस नहीं हटना चाहिए। मंजिल क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत, बैतुस सलाम, जहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार होगा, ठीक है। اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کی عافیت کے ساتھ اصلاح فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.